الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القیامہ کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ القیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی قسم بیان فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ القیامہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ قیامت کی قسم بڑی عظمت والا، بہت بڑا اور بہت زیادہ امور اپنے اندر رکھنے والا دن ہے، اور دوسری قسم بیان کی اس جان کی جو اپنے اوپر ملامت کرنے والی ہو، نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہے آدمی کے نفس کی وہ حالت و کیفیت جو اسے برائی پر ملامت کرتی ہے، یا اچھائی کرنے کے باوجود اسے کما حقہ نہ کرنے پر ملامت کرتی ہے۔ یہ نفس لوامہ بڑی عمدہ چیز ہے، اسے ہم اپنے عرف کے اندر ضمیر بھی کہتے ہیں، کہ اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ گناہ کر، یہ گناہ کر۔ ہمارے اندر جو گناہ کی خواہش ابھرتی ہے، تکبر کرنے کی، بدنگاہی کرنے کی اور گناہ کرنے کی، یہ نفس امارہ کی وجہ سے خارجی طور پہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور اندر سے ہمارا نفس امارہ ہمیں اس کے اوپر ابھارتا ہے۔ نفس امارہ کے ساتھ ایک دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ یہ نیک لوگوں کا نفس ہوتا ہے۔ نفس لوامہ یہ انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے، اگر کوئی کسی آدمی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو یہ نفس لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، تو نے کیا کیا، کہ شرم نہیں آتی، خدا کا خوف نہیں آتا، خدا سے حیا نہیں آتی۔ تو یہ اس طرح کی جو کیفیت انسان کے اندر ہے، یہ نفس لوامہ کی وجہ سے۔ پھر نفس لوامہ سے آگے بھی درجات شروع ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے، یہ بھی صورتیں۔ فرمایا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے؟ یہ ویسے تو عام طور پر ساری کافروں کا یہ معاملہ تھا جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ ہماری گلی سڑی ہڈیاں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن یہاں پر بطور خاص کچھ خاص کافروں کے اعتبار سے بھی ہے کہ انہوں نے ایسے جملے بولے، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے اس استعجاب، استبعاد اور استفسار کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو اس پر قادر ہیں کہ انسان کی بڑی بڑی ہڈیاں، اس کے بدن، اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں، کمر کی ہڈی، یہ تو بڑی بڑی ہڈیاں، فرمائے تو بڑی چیزیں، پوروں کی ہڈیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، فرمایا ہم تو اس پر قادر ہیں کہ پوروں کی ہڈیاں بھی اگر گل سڑ جائیں تو اس کو دوبارہ ایسے کر دے جیسے پہلے تھی، بالکل ٹھیک کر کے اسے بنا دے۔ تو جو خدا چھوٹی سے چھوٹی ہڈی کو بھی بالکل ٹھیک بنانے پر قادر ہے، تو اس کے لیے پورے بڑی بڑی ہڈیوں کو ملا کے دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اب آگے فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، बल्कि आदमी चाहता है कि वो अपने आगे को झुठलाए, पूछता है कियामत का दिन कब होगा। इंसान आगे को झुठलाता है यानी कियामत को झुठलाता है और सवाल करता है जी कियामत कब आएगी। ये बहुत सारे काफिरों का भी सवाल था और खास कुफार के तरफ भी मंसूब है कि उन्होंने कहा कियामत कब आएगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कियामत कब आएगी, फरमाया फ़ाइदा बरिकल बसर व खसफल कमर व जुमिया शम्स वल कमर। तो जिस दिन आंख दहशत जदा हो जाएगी और चांद तारीक हो जाएगा और सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा, कयामत की हौलनाकी की वजह से आंख दहशत जदा हो जाएगी, चांद तारीक हो जाएगा, सूरज चांद को मिला के बेनूर कर दिया जाएगा। और जब ये मंजर होगा तो फिर क्या होगा, फरमाया यकूलुल इंसानु यौमा इदिन अइनल मफर कल्ला ला वजर। उस दिन आदमी कहेगा भागने की जगह कहाँ है, हरगिज नहीं, कोई पनाह नहीं होगी। तो मैं ये है कयामत, इला रब्बी का यौमा इदिनिल मुस्तकर, उस दिन तेरे रब ही की तरफ जाकर ठहरना है। कयामत के दिन फरमाया कोई भागने की जगह नहीं होगी, बस तेरे रब की बारगाह में पहुंचना ही पड़ेगा, वहां अब जाके हिसाब देना ही देना है। फिर जब वहां पर पहुंचेगा खुदा की बारगाह में, फिर क्या होगा, फरमाया युनब्बा उल इंसानु यौमा इदिम बिमा कद्दम व अखर बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का माज़ीरा। उस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला बता दिया जाएगा, बल्कि आदमी खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखने वाला होगा, अगरचे अपनी सब माजरतें ला डाले। फरमाया कयामत के दिन बंदे को अगला पिछला जो किया सारे का सारा बता दिया जाएगा, छोटे से छोटा अमल, बड़े से बड़ा अमल, सब बता दिया जाएगा। बल्कि इंसान आदमी खुद ही अपने हाल पर पूरी निगाह रखने वाला होगा, नामाया माल सामने आजा बोल रहे होंगे इसने ये किया ये किया ये किया, तो बंदे को खुद ही सारा कुछ पता चल जाएगा क्या किया। तो उस दिन अगरचे बड़ी माजरतें पेश करे, या अल्लाह गलती हो गई, या अल्लाह ये हो गया, या अल्लाह वो हो गया, लेकिन कोई माजरत खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी। अब ये कयामत का तस्किरा जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब उसके बाद अगला मौजू शुरू होता है, वो मौजू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होता, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आते आके कुरान सुनाते, तो अब कुरान बाज़ों का तो एक दो आयतें नाजिल होती, बाज़ों का दस दस बीस बीस तीस तीस आयतें भी नाजिल होती, बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि पूरी पूरी सूरत ही नाजिल हुई। तो अब लाजमी बात है कि इकट्ठी एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए आके 20 आयतें पढ़ दी, तो अब उसको यकदम सुनना और याद रखना एक मुश्किल काम है। तो नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दोहराना शुरू कर देते, जिब्राइल अलैहि सलाम पढ़ते और सरकार अलैहि सलाम सुन भी रहे होते और दोहरा भी रहे होते जल्दी जल्दी। अब ये जो दोहराना था दामी बात है, ये है मुश्किल कि किसी को ये कहा जाए कि भाई मैं जो बोलूंगा उसी वक्त लफ्ज़ ब लफ्ज़ बगैर जेर जबर नुक्ते के फर्क के याद करना है मुशक्कत वाला काम। तो नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम अपनी जबान को जल्द जल्द हरकत देते और उसको दोहराते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहि सलातो वसलाम की इस मुशक्कत को ख़त्म कर दिया, चुनाचे उस पर ये अगली आयात नाजिल हुई। इरशाद फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह, ए नबी तुम याद करने की जल्दी में कुरान के साथ अपनी जबान को हरकत ना दो। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनह फइज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ कुरआनह ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ। बेशक इस कुरान का जमा करना और इसका पढ़ना हमारे जिम्मे है, तो जब हम इसे पढ़ लें तो उस वक्त उस पढ़े हुए की इत्तिबा करो, फिर बेशक उसे बयान फरमाना हमारे जिम्मे है। तो ये अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि ए हबीब अलैहिस्सलाम इस कुरान को आपके दिल में जमा करना महफूज करना ये हमारी जिम्मेदारी है, आप अपनी जबान को मुशक्कत में हरकत ना दें। हम आपके दिल में इसे जमा करेंगे, अब इसका पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, हम पढ़ेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे। तो लिहाजा जब हम पढ़ लें, या हम पढ़ने से मराद कौन है? कलाम तो खुदा का है, पढ़ते जिब्राइल अमीन अलैहि सलातो वसलाम। तो जिब्राइल के पढ़ने को अल्लाह ताला फरमाता है जब हम पढ़ लें, पढ़ जिब्राइल लें, अल्लाह ताला फरमाता है जब हम पढ़ लें। ये क्या है? ये है कि चूंकि अल्लाह के इज्न से और उसके हुक्म से और उसके फरमाने से जिब्राइल अलैहि सलाम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उस पढ़ने को अपनी तरह मंसूब फरमा रहा है कि जब हम पढ़ लें। तो ये अल्लाह ताला के प्यारे बंदों के बहुत से अफ़ाल अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किए जाते हैं। तो फरमाया कि जब हम पढ़ लें तो उस वक्त उस पढ़े हुए की इत्तिबा करो, और फरमाया कि फिर उसका बयान हमारे ज़िम्मे है, जो हम कुरान आप पे उतार देंगे, उस कुरान का जो बयान है यानी उसकी तशरीह तौज़ीह, ये हमारे ज़िम्मे है। तो कुरान अल्लाह ताला ने अपने हबीब अली सलाम को अता फरमाया और उसके उलूम भी अता फरमाए। अब इसके बाद जो खिताब है वो कुफार की तरफ मुतवज्जे होता है। फरमाया कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा। खबरदार, बल्कि ए काफिरो, तुम जल्द जाने वाली को पसंद करते हो और आखिरत को छोड़ते हो। दुनिया जल्द जाने वाली, जिंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आमतौर पे इसी के अंदर अंदर ही 95% लोग गुजर जाते हैं। बहुत कम है कि जो 90 ईयर से भी ऊपर जाए, 90 साल से भी ऊपर जाए, बहुत अकल्ले कली। तो फरमाया कि ये तो जल्द जाने वाली, फिर पूरी दुनिया ऐसा होल, सारी दुनिया जो है आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में तो जल्द जाने वाली। तो फरमाया कि काफिरों, तुम इस जल्द जाने वाली को पसंद करते हो और आखिरत को छोड़ते हो, जो हमेशा है, जिसने हमेशा रहना है, हमेशा की जिंदगी। यहां पर खिताब तो कुफार के एतबार से है, लेकिन इसमें हमारे लिए भी नसीहत है, क्योंकि असल यहां पर यह है कि तुम दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे पड़ते हो और आखिरत की दायमी नेमतों को भूलते हो, उसे छोड़ के बैठ जाते हो। तो हम मुसलमानों की अक्सरियत का हाल भी यही है कि दुनिया की ख्वाहिशात और नफ्स की ख्वाहिशात जो है, हम उसके पीछे, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया के खजाने, दुनिया का स्टेटस, दुनिया के बैंक बैलेंस, हमारा मतमाहे नजर, हमारा मकसूद मतलूब यही बन जाता है। आखिरत बहुत थर्ड प्रायोरिटी पे और लास्ट प्रायोरिटी पे चली जाती है, वो हमारी बिल्कुल आखिरी तरजीहात में होती है, क्योंकि आदमी की जो तरजीह, जितनी तरजीह होती है वो उतनी तवज्जो देता है। हम अगर रुपए कमाना चाहते हैं, हमारी तरजीह है, तो दिन रात कोशिश भी करते हैं। एक बंदा कमाने के लिए तिनका ना तोड़े तो उसको लोग यही बोलेंगे, यार इसका कमाने का इरादा ही नहीं। तो आखिरत के लिए हम कुछ करें ही नहीं, ना नमाज, ना रोज़ा, ना जिक्र, ना तिलावत, ना लोगों का भला, ना खौफ खुदा, ना रियाकारी से बचना, ना नेकियां करना, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि आखिरत इसकी तरजीह के अंदर ही नहीं, और अक्सरियत लोगों की ऐसी ही है कि आखिरत उनकी तरजीह के अंदर नहीं है। हालांकि आखिरत को तरजीह बना के, क्यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देने को पेश नज़र रख के, जन्नत को सामने रख के, जन्नत की नेमतों को सामने रख के, अगर आदमी ज़रा जिए तो क्या होगा? सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है कि आप यकीन कीजिए कि अगर लाखों जाने कुर्बान कर दी जाए और फिर ये नेमत मिल जाए तब भी सस्ती है। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपने रब को देखने वाले होंगे। क़यामत के दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब का उन्हें दीदार नसीब होगा। जन्नत के अंदर मोमिनों को खुदा का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह, आप तसव्वुर कर सकते हैं कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है ये जन्नत की, और हजारों लाखों करोड़ों नेमतें हैं, लेकिन वो सब नेमतें एक तरफ, खुदा का दीदार एक तरफ। क्या यानी इससे बढ़ के क्या हो सकता है? खुदा बंदे कुदूस का दीदार हम तो यहां दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि होगा कैसे। दुनिया में हम उसकी कोई हकीकत और माहियत और वो चीज ही बयान नहीं कर सकते कि खुदा का दीदार कैसे होगा और कितना होगा, कैसे होगा। हदीस में मरकज करता हूं, ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی وہ ہوں گے جن کو صبح و شام خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کے اندر ایک مرتبہ بھی خدا کا دیدار مل جائے، ایک مرتبہ بھی، تو اس سے بڑھ کے کیا نعمت۔ لیکن وہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم ترین نعمت، عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دنیا کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی، تجلی ان کو دکھائی گئی، دیدار نہیں ہوا، اور فرمایا کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی کو دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ آخرت کے اندر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ایک گروہ ہو گیا جنتیوں کا، چہرے تر و تازہ۔ دوسری طرف فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ تر و تازہ چہرے جنتیوں کے اور بگڑے ہوئے چہرے جہنمیوں کے، اور ان کو پتا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جو پیٹھ توڑ دے، انتہائی سخت سلوک کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ موت کے احوال بیان فرماتا ہے، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور بندہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ موت کا وقت آتا ہے، جان گلے کو آ گئی، اب شور مچا ہوا، اے کوئی دم والا، کوئی دوائی والا، کوئی جھاڑ پھونک والا، کوئی دیکھے اس کو، کوئی دم کرے شاید بچ جائے، لیکن بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ پھر کیا ہوگا، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، یا کفن کے اندر پنڈلیوں کو ملا کے باندھ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کفن کے اندر پنڈلیوں کو باندھ دیا، پنڈلی پنڈلی سے مل گئی، اور یا پھر یہ ہے کہ ایک سختی کے بعد دوسری سختی، ساق سے مراد سختی، ایک سختی تو دنیا، ایک سختی تو دنیا کی نعمت، دنیا سے جدائی کی، اور دوسری جو موت کی اپنی سختی ہے، وہ تو سختی سے سختی مل گئی۔ اب آگے کیا ہوگا، فرمایا الى ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا، مرنے کے بعد خدا کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ اب اس کے بعد ابو جہل کے حوالے سے آیات ہیں، اس کے تکبر، رویے، انکار، کفر اور سرکشی کے بارے میں فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ ابو جہل کے حوالے سے شان نزول یہی ہے کہ اسی کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ویسے بھی بہت سارے کافروں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ باتیں تو سمجھ میں پائی جاتی ہیں، نہ تصدیق کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، یہ تو ہر کافر کے اندر ہے، اپنے گھر کی طرف اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے جاتے ہیں، ہم تو بڑے، ہمارے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے، ہمارے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، تو اپنے گھر اکڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، फिर तेरे लिए खराबी है, फिर खराबी है। अबू जहल के हवाले से और वैसे भी कुफार के हवाले से चार मरतबा फरमाया खराबी है, खराबी है, खराबी है, खराबी है, दुनिया में कुफर की वजह से, फिर मौत के वक्त खराबी, फिर कब्र में खराबी, फिर आखिरत में खराबी, या मौत के वक्त खराबी कि मौत सख्त आएगी, कब्र में खराबी अजाब होगा, क्यामत में खराबी रुसवा होगा, जहन्नम में खराबी अजाब होगा। तो इसकी मौत के वक्त से खराबियों का सिलसिला शुरू। ईमान बड़ी दौलत है, ईमान है चारों खराबियों से बचत हो सकती, मौत की भी, कब्र की भी, आखिरत की भी, जहन्नम की भी। ईमान बड़ी दौलत है। अब आगे इरशाद होता है, अयहसबुल इंसानु अन युतराका सुदा, क्या आदमी इस घुमंड में है कि उसे आजाद छोड़ दिया जाएगा। आयत देखिए और आज के लोगों के जुमले सुने, फरमाया क्या आदमी इस घुमंड में है कि उसे आजाद छोड़ दिया जाएगा। आजाद ख्याली, जरा गौर कीजिए, आज बड़े नारे लगते ना, आजाद ख्याल हैं हम, तो आजाद लोग हैं, हमें तो जो है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, मेरा जिस्म है ना, मैं अपने बदकारी करूं, जो मर्जी करूं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या बंदा ये गुमान करता है कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, आजाद ही छोड़ दिया जाएगा, जो चाहे करो। नहीं, खुदा का बंदा है तो खुदा के अहकाम भी मानने पड़ेंगे। खुदा ने पैदा किया, खालिक है, मालिक है, राजिक है, जिसने पैदा किया, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हें रिस्क देता है, जो इतनी लंबी जिंदगी में तरह तरह की आसानियां देता है, हिसाब नहीं लेगा। तुम कहते हो नहीं जनाब, मैं किसी दफ्तर में काम करूं और मेरा बॉस जो है वो मुझे गाड़ी भी दे, बंगला भी दे, तनख्वाह भी दे, लेकिन काम ना पूछे। अल्लाह अकबर, को दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा को बेवकूफ नौकर देखा, ये बोले कि बॉस मुझे हर चीज दे, मेरे मुझे फैमिली रिहाइश दे, मुझे मेडिकल अलाउंस दे, मुझे सालाना बोनस दे, मुझे हर महीने तनख्वाह दे भारी भारी, मेरी हर जो है वो दुख सुख के अंदर मेरी मदद करे, गाड़ी शानदार, बंगला आला, इज्जत, स्टेटस, सब कुछ दे, लेकिन काम ना पूछे मुझसे, क्योंकि मैं तो आजाद हूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, काम करूं ना करूं। अरे तो भाई, तेरा जिस्म तेरी मर्जी है, जो बॉस तुझे इतना कुछ दे रहा है, तो वो जो इतना कुछ दे रहा उसकी भी कुछ मर्जी है या नहीं, वो तुझे ऐसे दिए जा रहा है। तो दुनिया का दो टके का बॉस, वो तो तुम्हें महाना 30-35-40 हजार 1 लाख रुपया दे दे और तू गुलामों की तरह उसके पीछे पीछे फिरे, और वहां नहीं तेरी जबान से ये लफ्ज निकलेगा मेरी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वहां बोलेगा नहीं, जो मेरा बॉस कहेगा वही करूंगा। तो बॉस को तूने खुदा से बड़ा समझ लिया, जिस खुदा ने तुझे कतरे से पैदा किया, बचपन के अंदर तेरी कोई औकात नहीं थी, तुझे जरा नहलाता कोई दूसरा था, तुझे पहनाता कोई दूसरा था, फीड तुझे कोई दूसरा कराता था, उसने वहां से लेके तुझे कड़ियल जवान बना दिया, जिंदगी की आसाइश दी, आंखों में नूर रख दिया, कानों में कुव्वत समात रख दी, जबान में कुव्वत गोयाई रख दी, और तू कहता है कि या अल्लाह तू बस देता रहे, लेकिन मेरा जैसा मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। अलमान वल हफीज। तो फरमाया अयहसबुल इंसानु अन युतराका सुदा, क्या आदमी इस घुमंड में है कि उसे आजाद छोड़ दिया जाएगा। नहीं, आजाद नहीं छोड़ा जाएगा, उससे एक एक शय का हिसाब होगा, एक एक शय का हिसाब होगा। अब वही जो मैंने बात की ना कि आजाद तो कर दिया जाए, और कहां से पैदा करके खुदा ने कहां तक पहुंचाया उसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला खुद आगे इरशाद फरमाता है, फरमाया अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना ثم كان علقة فخلق فصفى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى, क्या वो उस मनी का एक कतरा न था जो गिराया जाता है, फिर खून का लोथड़ा हो गया तो पैदा हुआ, फिर ठीक बनाया तो उसे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। फरमाया देखो तो कहां से कहां पहुंचाया, तो जिसने यहां से वहां पहुंचाया वो तुमसे हिसाब ही ना ले, और फिर जिसकी ये कुदरत है कि तुम्हें कहां से कहां तक पैदा करके कहां पहुंचा दिया, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या जिसने ये सब कुछ किया वो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर नहीं? यकीनन है वो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये आयते करीमा तिलावत फरमाते कि क्या वो जिसने ये सब कुछ किया वो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर नहीं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते सुबहानकल्लाहुम्मा बला, ए अल्लाह तू पाक है, क्यों नहीं तू मुर्दों को जिंदा करने पर जरूर कादिर है। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका था। ये सूरतुल कियामा जो है ये मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद सूरतुल दहर शुरू होती है। दहर का मतलब है जमाना, तवील अरसे को दहर कहा जाता है। इमाम मुजाहिद, हजरत कतादा और जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। बाज़ फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और बाज़ कहते हैं कि कुछ आयतें मक्के में कुछ आयतें मदीने में। तो इस सूरत मुबारका के शान नुज़ूल में इख्तलाफ है। इस सूरत में दो रुकू और 31 आयतें हैं। लंबे जमाने को अरबी में दहर कहते हैं। इस सूरत के शुरू में लफ्ज़ दहर है तो उसकी मुनासबत से इसका नाम सूरह दहर है। और इसका एक दूसरा नाम भी है सूरह इंसान, और वो भी पहली आयत के अंदर ही लफ्ज़ मौजूद है उसकी मुनासबत से सूरह इंसान। और ये सूरह मुबारक बड़ी खूबसूरत सूरत है। कुरान की हर सूरत ही खूबसूरत है। इसमें जो जन्नत का अल्लाह ताला ने तस्किरा किया है, सुबहान अल्लाह, मैं कहता हूँ कि आप कभी तन्हाई के अंदर, ये सूरह दहर जो है 29वें पारे की सेकंड लास्ट सूरत है ये, आप इस सूरह मुबारका को तन्हाई में तर्जमा पढ़े, तफसीर पढ़े, अल्लाह हू अकबर, जन्नत आपकी आंखों के सामने ऐसे हो जाएगी। इतना खूबसूरत मंजर अल्लाह ताला ने जन्नत का बयान किया है। अल्लाह ताला हमें वो जन्नत अता फरमाए, जन्नत की नेमत अता फरमाए, और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अपना दीदार अता फरमाए। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा, बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा कि वो कोई जिक्र के काबिल चीज ना था। आदमी पर वो वक्त गुजरा, इससे क्या मुराद है? अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते इससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुराद है। आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने से पहले का जो ड्यूरेशन है और जो जमाना है, ये उसके एतबार से कलाम है कि वो ऐसा वक्त था कि वो जिक्र के काबिल कोई सूरत ना थी, यानी जिसको बतौर खास बयान किया जाता है। एक है खुदा की कुदरत के एतबार से, वो तो कुरान पाक के अंदर ही जिक्र किया गया है, तो जिक्र के काबिल है तो बयान किया गया। एक ये होता है कि उसे जुदा गाना एक इंसान की अहमियत के एतबार से देखा जाए कि वो मिट्टी, फिर गारा, फिर वो और उसकी कैफियत बदलते बदलते फिर अल्लाह ताला उसमें रूह फूंकी। तो एक कॉल तो ये है। दूसरा कॉल ये है कि इससे मुराद हर इंसान ही, हर इंसान पर एक जमाना गुजरता है जिसमें वो काबिल जिक्र शय नहीं होता। जब वो उसकी बुनियाद पड़ती, पहला महीना क्या है? वो पानी का कतरा, खून का कतरा है वो। फिर क्या है? गोश्त का लोथड़ा बन गया। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा मजीद बड़ा हो गया। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या उसको बोलें, ये कौन है, इसका क्या मनसब है, इसका क्या स्टेटस है, ये कितना मालदार है? कुछ भी नहीं, ये जिक्र के काबिल चीज ही नहीं है। हाँ, पैदा होगा तो अब इसका शुरू हो जाएगा कि ये क्या है। तो फरमाया कि हर इंसान पे वो वक्त गुजरा कि वो जिक्र करने के काबिल चीज नहीं होता। अब आगे फरमाया इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, बेशक हमने आदमी को मिली हुई मनी से पैदा किया ताकि हम उसका इम्तिहान लें, तो हमने उसे सुनने वाला देखने वाला बनाया। बेशक हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, अब या शुक्रगुजार है और या नाशुक्री करने वाला है। फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया ताकि आजमाएं, हमारा बंदा बनता है या शैतान का बंदा बनने की कोशिश करता है। हमने इंसान को सुनने वाला देखने वाला बनाया, सुने हर बात सुने, हक बात भी सुने, देखे हर बात देखे, मुशाहदा करे, हक भी देखे, हक को भी देखे। फरमाया हमने बंदे को रास्ता दिखा दिया, पकड़ के ना उसको गुमराह करेंगे, पकड़ के ना उसको हिदायत देंगे। हमने उसे रास्ता दिखा दिया, अब उसकी मर्जी है शुक्रगुजार बनता है या नाशुकरा बनता है। फरमाया अब काफिरों का और जन्नतियों का तस्करा शुरू होता है। काफिरों का बड़ा मुख्तसर सा, जन्नतियों का तफसील से। फरमाया इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलालम व सईरा, बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और भड़कती आग तैयार कर रखी है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا, बेशक नेक लोग उस जाम से पिएंगे जिसमें काफूर मिला हुआ होगा। वो काफूर एक चश्मा है जिससे अल्लाह के निहायत खास बंदे पिएंगे, वो उसे जहां चाहेंगे बहा कर ले जाएंगे। ये अबरार का मशरूब है जन्नत के अंदर, कि ऐसे जाम से पिएंगे जिसमें काफूर मिला हुआ होगा। और वो काफूर क्या है? वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के निहायत खास बंदे पिएंगे। और उसमें भी खूबसूरती क्या है कि चश्मा जहां मर्दी बहा के ले जाए, वरना तो चश्मा बह रहा होता बंदा चश्मे के पास जाता है, यहां ये होगा बंदा जिधर बोलेगा चश्मा उसके पीछे पीछे जा रहा होगा। सुभान अल्लाह। अब ये अबरार कौन है जिनको ये जन्नत की ये नेमतें मिलेंगी, वो हैं कौन? फरमाया यूफून बिन नदरी व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, वो अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई फैली हुई होगी। मन्नत माने कि अल्लाह के लिए मैं ये करूंगा, मेरा बेटा तंदुरुस्त हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, मैं अल्लाह के नाम इतना खर्च करूंगा, मैं इतने नवाफिल पढ़ूंगा, इतने रोजे रखूंगा, जो मन्नत माने उसे पूरी करते हैं। ये नहीं है कि पहले तो या अल्लाह ये भी कर दूंगा, ये भी काम हो गया तो भूल गए सारा कुछ। मन्नत मानी अल्लाह के नाम पे तो पूरी भी करेंगे, और डरते हैं क्यामत के दिन से जिसकी बुराई बड़ी फैली हुई होगी। तो ये है अबरार जिनको जन्नत मिलेगी। और भी उनके वस्फ, वो क्या? फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। खुदा की मोहब्बत में मिस्कीन यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। सबको खाना खिलाने का बड़ा सवाब, मिस्कीन को भी यतीम को भी। अच्छा, और फिर इनको खिला के क्या कहते हैं? मिस्कीन को खिला दिया, यतीम को खिला दिया, एहसान नहीं जताते। अल्लाहु अकबर, क्या कहते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम तुम्हें खास अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया, बेशक हमें अपने रब से एक ऐसे दिन का डर है जो बहुत तुर्श निहायत सख्त है। देखे, यतीम मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाया, तो खाना खिला के क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहते। अब गौर करें, इखलास इसे कहते हैं। हम तो किसी को दे दें ना कभी 100 रुपया, या किसी की बुरे वक्त में मदद कर दें, तो पहले तो हमारे दिन में ये होता है यार कभी हमारे ऊपर बुरा वक्त है तो ये हमारी मदद करे। और अगर ये ना भी हो कि चले एक आदमी करोड़पति है, दूसरा बहुत गरीब है, अब गरीब को उसने दे दिया 10,000 रुपया, तो ये तो नहीं अमीर सोचेगा कि मेरे ऊपर बुरा वक्त है तो ये मेरी मदद करे। लेकिन एटलीस्ट उसके दिन में ये जरूर होता है कि यार जिसकी मैंने मदद किया मेरा शुक्रिया अदा करे, मेरा शुक्रिया अदा करे, आते जाते जरा सलाम कर दिया करे, लोगों के दरमियान अगर मैं आऊं और ये बैठा हो तो झुक के मुझे हाजी साहब कह के मुलाकात कर ले, आए हाय हमारा यकीन करे, हमारे इखलास का क्या हाल है। हम किसी पे एहसान कर दें तो या तो बदले की तमन्ना या शुक्रिया की तमन्ना है। यार एटलीस्ट शुक्रिया तो अदा करे यार, ऐसा बेदीद आदमी है, मैंने इतनी मदद की है भूल के शुक्रिया तक नहीं अदा किया। अरे भाई, ये जो शुक्रिया की तमन्ना है ये इखलास कामिल के खिलाफ है। सिर्फ अल्लाह के लिए, इन्नमा, अल्फाज देखिए, फरमाए इन्नमा, सिर्फ सिर्फ हम तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहिए ना तुमसे शुक्रिया चाहिए। काश के हमारा इखलास ऐसा हो जाए, किसी की भले उसको पूरा मकान ही तोहफे में दे दें, गरीब आदमी है, मकान नहीं था उसको मकान दे दिया, गरीब आदमी था बच्ची की शादी नहीं कर सकता था, हमने 5 लाख रुपया दे के उसकी बच्ची की शादी करा दी, लेकिन कभी उसे तमन्ना ना करे मेरा शुक्रिया अदा करे। क्यों? इसलिए कि मैंने इसके शुक्रिया के लिए पैसा खर्च नहीं किया, मैंने खुदा से अजर लेने के लिए ये सारा कुछ किया था, लिवजिल्ला की अल्लाह के लिए किया था, शुक्रिया के लिए नहीं किया था। काश हमारा इखलास ऐसा हो जाए, हमारा इखलास ऐसा हो जाए तो फिर वो जो जन्नत की नेमतें जो बयान हो रही हैं फिर ये नसीब होंगी, फिर ये जन्नत की ये सारी चीज़ें। अब फिर क्या होगा? ऐसे इखलास के साथ जब खर्च करेंगे तो क्या होगा? फरमाया फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक्काहुम नबरतन वसुरूरा, तो उन्हें अल्लाह उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें तरोताजगी और खुशी अता फरमाएगा। जो यतीम मिस्कीन गरीब को खाना खिलाएं और कोई मुतालबा ना करें, इवज ना मांगे, क्यामत के दिन से डरें, तो अल्लाह ताला क्यामत के दिन के शर से उसे बचा लेगा और उन्हें तरोताजगी और खुशी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, यही यही मतलूब होना चाहिए, मकसूद होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।